समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देंगे आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल पर भी रहेगी हमारी नजर और आर्थिक जगत के उतार चढ़ाव की भी करेंगे बात और याद करेंगे उन व्यक्तित्वों को भी जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। आज इस अंक में मैं हूं आपके साथ जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं सायरा मुस्तफा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार जागृति, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। जागृति हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो। सो वेल, परिक्रमा तो एक हमारा ऐसा शो है ना जिसमें देश की परिक्रमा करने का मौका मिलता है। विल गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कमिंग इन फ्रॉम देयर। And well, on that note, let's start today's show, Jagruti, with the headlines.
Bilkul.
Severe cyclonic storm Rimal weakens into cyclonic storm. West Bengal continues to be on high alert following forecast of heavy to very heavy rainfall. Relief and rescue operations in full swing.
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राजकोट टीआरपी गेम जोन में आग लगने के मामले में 7 अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया। मरने वालों की संख्या 30 हुई।
Campaigning gains momentum for 7th and final phase of Lok Sabha elections.
Delhi ke mukhyamantri Arvind Kejriwal ne apni antarim zamanat ko 7 din aur badhane ke liye Sarvochcha Nyayalay mein yachika dayar ki.
Sensex hits 76,000 mark for the first time. Nifty also scales a fresh peak.
Aur Bharat ne FIH Hockey Pro League muqable mein Argentina ko 4 ke muqable 5 goal se parajit kiya.
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments that take place at the national or global level. Aur aajkal to sabhi ki zuban pe bas ek hi baat hai, uff ye garmi.
Aur Saira, jab hum ghar se nikalte hain, kahin bhi jana ho, chahe wo office aana ho, chahe kisi zaruri kaam ke liye jana ho, to sabse bada sawal aur sabse bada dar bhi to yahi hota hai, heat wave jis tarike se chal rahi hai aur thodi si bhi aapki asavdhani aapke liye, aapke swasthya ke liye bahut bada khatra ban jati hai.
Bilkul bilkul. And you can say there is no respite also in the coming days from the heat wave. The Inter Meteorological Department on Sunday said that Delhi NCR will continue experiencing a severe heat wave for the next 3 days and has issued a red alert in the area until May 29. Delhi NCR has been witnessing extreme temperatures since late April. IMD's data suggests that this year's heat wave in April was far worse than last year's, making it the hottest year on record.
बिल्कुल, देश के कई इलाकों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तेज गर्मी और हीट वेव की वजह से लोगों में स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ रहे हैं। भीषण गर्मी में तमाम तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं और इन सब के लिए हम चलेंगे लाइव, हम जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आर के जैनामणि के साथ और उनसे जानेंगे कि जो हीट वेव है, भीषण गर्मी है, इसको लेकर अभी आगे क्या अलर्ट है मौसम विभाग का।
नमस्कार।
हेलो।
या नमस्कार
जी। नमस्कार सर, आगे भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग को अभी क्या प्रेडिक्शन है, आगे क्या अलर्ट है?
नहीं, अभी जो अपडेट आज जो 27th का जो अपडेट आया है कि हीटवेव, सीवियर हीटवेव 45 से ज्यादा जो तापमान है अभी भी परसिस्ट है और पर्टिकुलरली जैसे दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी चल रहा है और कहीं कहीं स्टेशन भी 47-48 का तापमान दर्ज कर रहा है। जैसे दिल्ली में जो नजफगढ़ है, मंगेशकरपुर है और उसी के साथ साथ जो राजस्थान का इलाका है, जैसे हमारा जो फालोदी है, वो लगातार 2 दिन हो गया 49 डिग्री, यानी देश का सबसे ज्यादा उत्तर शहर टेम्परेचर आ रहा है और ये सब जो लू का जो कंडीशन चल रहा है इसके वजह से लाल कलर यानी रेड कलर टेक एक्शन जिसको बोलते हैं कि आप घर से ना निकले, अगर निकलते हैं तो फुल कॉटन क्लॉथ और लूज क्लॉथ और पानी के साथ निकले, अगर इमरजेंसी काम है तो निकले। 11 से सुबह जो 11 बजे से शाम को 3 बजे तक, आफ्टरनून 3 बजे तक न जाए, अपने को डायरेक्ट सनलाइट से बचाए।
जी बिल्कुल। और अभी आपने बताया कि किन किन इलाकों में अलर्ट है और पारा कितना चढ़ चुका है, कब तक राहत की उम्मीद की जा सकती है?
देखिए, जो राहत मेनली मिलता है तो बारिश का रहता है, मेनली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पश्चिम भारत में उत्तर भारत में राहत दिलाता है, लेकिन 15 मई के बाद जो है कहीं भी बारिश नहीं हुआ और कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आगमन नहीं हुआ, जिसके कारण से अभी चालू है 16-17 मई ऑनवर्ड ये हीट वेव शुरू हुआ था, काफी लंबा स्केल चल रहा है। और जो राहत है अभी हम तो 5 दिन जो है हीट वेव रहेगा दे रहे हैं, और आगे फिर देखेंगे जैसे कंडीशन आएगा तो बता पाएंगे। नॉर्मली हम लोग 4-5 दिन तक बताते हैं, लेकिन जो पूर्वी का जो हवा आता है जैसे इंडो गंगटिक प्लेन्स का, बंगाल का खाड़ी से, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तापमान अगर थोड़ा बहुत राहत हो सकता है तो 1 जून या 2 जून से थोड़ा 1-2 डिग्री गिरेगा तापमान।
जी धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए सर।
एंड ऑफ कोर्स जागृति, सो दैट मींस देयर इज नो रिस्पाइट आल्सो फ्रॉम द हीट वेव इन द कमिंग फ्यू डेज, व्हिच मींस दैट वी रियली हैव टू टेक अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। सो व्हाई नॉट हियर व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू टेक फ्रॉम अ सीनियर डॉक्टर हिमसेल्फ। We welcome Dr. J.K.S. Parihar, who has joined us now live on the phone. Dr. Parihar, welcome to our show.
Thank you, madam.
Yes, Dr. Parihar, अगर आप बता सकें कि because of the heat wave क्या कुछ बचाव करना चाहिए, especially बच्चों के लिए, अगर आप कुछ बता सकें तो।
बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, सारे ये heat wave में आंखों में काफी परेशानियां आती हैं। परेशानी आने में दो चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं कि गर्मियों में तेज लू चल रही है, साथ में हवा चल रही है जिसमें ड्राइनेस बहुत है, पत्ते और धूल वगैरह होते रहते हैं, तो इससे जो है टेम्परेचर बढ़ने से आजकल ड्राई बढ़ता है। और आजकल जिस तरह से हम लोग मोबाइल लैपटॉप इत्यादि बहुत यूज करते हैं, ये परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो बच्चों में इससे बेस्ट ये है कि उनको इससे दिया है, क्योंकि बच्चों का जो लेंस होता है वो पूरा नहीं होता है, तो तेज रोशनी से रेडिएशन जो है वो लेंस को क्रॉस करता हुआ रेटिना को भी अफेक्ट कर सकता है, तो ड्राइनेस भी होती है और रेटिनल उनको भी इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तीसरा, इन्फेक्शन के रिस्क इसमें बहुत बढ़ जाते हैं, तो हर तरह से आंख का बचाव रखना बहुत जरूरी है। और खासकर के जो हमारे भाई जो बाहर दिल्ली जैसे शहर में बाहर काम कर साउथपुर में रहते हैं या फार्मर्स वगैरह हैं, उसमें मैं देख रहा हूँ कि ये जो फंगल अल्सर है आगे का हिस्सा है, उसमें फंगल इन्फेक्शन भी इन दिनों में बढ़ जाते हैं। तो चोट से बचाव, धूल दपट्टे का, आंख के टेम्परेचर बढ़ने से ड्राइनेस का होना, रेटिना में इफेक्ट आना, ये तेज गर्मी जो लू चल रही है उसके ये बुरे असर होते हैं।
जी, और अगर किसी को लू लग जाती है जैसे आप बात कर रहे हैं, तो लू लग जाने के बाद में फिर घर पर ऐसे क्या घरेलू उपाय हैं जो किए जा सकते हैं आसानी से?
आप लू के बारे में पूछ रहे हैं कि लू की वजह से आंख के बारे में पूछ रहे हैं?
जी, लू के बारे में।
हाँ, लू में होता है तो उसमें क्या होता है कि एकदम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने से जो ब्रेन में टेम्परेचर स्टेबलाइज करने का जो सिस्टम होता है वो इम्बेलेंस होने लगता है। तो तेज बुखार के आने के साथ में उल्टी होना, दस्त होना और आंखों में जलन होना, ये सारी समस्याएं उसमें आने लगती हैं। तो उसका तरीका ये रहता है कि उसको जो भी है उनको ढीले कपड़े पहनाए जाए और उनका टेम्परेचर जो है जितना जल्दी कम किया जा सके, उसमें जो है बर्फ की सिल्ली वगैरह रखना या जो गीली पट्टियां है उससे कम करना। छोटे बच्चों में लू लगने से डिहाइड्रेशन की संभावनाएं बहुत होती हैं, डायबिटीज लोगों में होती है, तो उनका फ्लूइड इम्बेलेंस होता है, तो बच्चों में जो है ORS फ्लूइड जो होते हैं वो दिए जाए, खूब पानी उनको जहां तक हो सके पिलाया जाए, और जहां जरूरत होती है जलन लगी है और बच्चा छोटा है तो फिर उसके बाद जो है हॉस्पिटल में ही करना ठीक होता है, क्योंकि बच्चों में जो सीवियर सिम्टम्स की वजह से होने वाले चेंजेस हैं वो बड़े जल्दी आ जाते हैं। तो बहुत छोटा बच्चा है तो फिर आपको पक्का अगर टेम्परेचर 103-104 जा रहा है तो उसका इलाज जो है वो किसी एक्सपर्ट के डायरेक्ट उसमें ही होना चाहिए। मॉडरेट है और दूसरे इंडिविजुअल्स हैं तो उसको पहले जो है टेम्परेचर को कम करने के लिए मेडिसिन दी जा सकती है और उसको ठंडा पट्टी वगैरह यूज किए जा सकते हैं, और जितना हो सके ORS पानी या शक्कर और नमक मिला के जो है वो दिया जाना चाहिए, उससे उनको आराम मिलता है।
जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सर।
एंड जागृति, दोज हु ऑफकोर्स हम लोग तो ये सारे घरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं, बट दोज हु हैव द मीन्स एंड द टाइम दे आर हेडिंग टुवर्ड्स द हिल स्टेशन बिकॉज इट इज सीन दैट कश्मीर वैली स्पेशली द कश्मीर एयरपोर्ट इज सो बिजी दीज डेज, देर आर मोर देन 100 फ्लाइट्स दैट आर ऑपरेटिंग ऑन अ डेली बेसिस, इजंट इट?
बिल्कुल, और अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कई कई घंटों का इस समय ट्रैफिक लगा हुआ है, 20-20 किलोमीटर का जो ट्रैफिक लगा हुआ है। इस समय पर जो लोग हैं गर्मी से इतने परेशान हैं कि वो ठंडक की ओर देख रहे हैं, तो ठंडक तो पहाड़ों में और वादियों में ही मिलती है, इसीलिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन 95 से 100 से अधिक उड़ानें संचालित हो रही हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटकों को श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील और उसके आसपास के इलाकों की सुंदरता का आनंद लेते देखा जा सकता है। श्रीनगर में डल झील और उत्तरी कश्मीर में गुलमर्ग की बर्फ से ढकी चोटियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं।
वेल, दैट वॉज आवर डिस्कशन टुडे इन डेटलाइन ऑन हीट वेव।
और अब चलते हैं परिक्रमा के जो रियल हमारा परिक्रमा है उसकी तरफ, अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनके पास में क्या विशेष है हमारे लिए। सबसे पहले हम चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां 5 जून से पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी पर्व तक जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए संपूर्ण प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। अभियान की अवधि के दौरान हर जिले में जल स्रोतों जैसे नदी, कुएं, तालाब, बावड़ी, इन सबको स्वच्छ रखने और आवश्यकता होने पर उनके गहरीकरण के लिए गतिविधियां संचालित की जाएंगी। किस तरह से अभियान चलेगा, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता संजीव शर्मा से।
मध्य प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण का यह कार्य जन सहभागिता से होगा। इससे जल स्रोतों के प्रति सामाजिक चेतना जागृत करने और जन सामान्य का जल स्रोतों से जीवंत संबंध विकसित करने में मदद मिलेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान का नेतृत्व जन प्रतिनिधि करेंगे और जिला कलेक्टर गतिविधियों का समन्वय करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में सभी सामाजिक, शासकीय, अशासकीय संस्थाओं और जन अभियान परिषद से जुड़े संगठनों से इस अभियान में शामिल होने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से ही जल संरचनाओं का चयन किया जाए और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए सघन जन जागृति अभियान भी चलाया जाए। अभियान के दौरान नदियों, तालाबों से गाद या खाद के रूप में निकलने वाली मिट्टी किसानों को खेतों में उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। जल संरचनाओं पर किए गए अतिक्रमणों को जिला प्रशासन द्वारा हटाया जाएगा। प्रारंभिक रूप से अभियान 5 से 15 जून तक चलाया जाएगा, इसके बाद अभियान की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। नमामि गंगे परियोजना के नाम से आरंभ हो रहे जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के इस विशेष अभियान के लिए ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और ग्रामीण विकास तथा नगरीय क्षेत्र में नगरीय विकास और आवास विभाग नोडल विभाग होंगे। जल संरचनाओं के चयन और उन्नयन कार्य में GIS तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इन स्थलों की मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग भी की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा अमृत 2.0 योजना के तहत जल संरचनाओं के उन्नयन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रिहायशी इलाकों में बंद पड़े रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की साफ सफाई कर उनके पुनः उपयोग के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा।
And now in our journey of Parikrama, we go down south to Puducherry. The Tourism Department of Government of Puducherry has established an art and craft village in a serene environment on the outskirts of the Puducherry town at Murungapakkam village. It was started in the year 2018 with the intention of bringing local traditional artisans under one roof and providing support to them for making and selling their artifacts. A report.
In this village, various traditional artisans are excelling their competence in 20 stalls. They are making artifacts from coconut, leather, stone, shell, wood and paper. In addition to these, terracotta, tangier paintings, glass paintings, candle making, pot making, mat from nut grass, palm products, weaving and metal works are also in the list of stalls. All the stalls are manned by master craft persons. 3 of them had received State Award of Kalaimamani and one has received Batmastri Award. Sri V.K. Munusami, Batmastri awardee, is maintaining the terracotta stall and giving training to the school students in the weekends and school holidays. The visitors have a choice to look into a range of unique craft items made by the local artisans and can purchase the liked ones at affordable prices. If a visitor wants to get hands-on experience into the intricacies of craft making, she or he is allowed to sit along with the artisans and participate participate in the making process. Most of the visitors prefer to put their hands in the potter's wheel. If anyone wants to learn any of the craft, then she or he is welcomed and allowed to get the training with the particular artisan. The trainee has to pay minimum amount to meet the expenses for the raw materials. College students as a group are regularly getting training in various crafts in this village. There is no age limit to get training in this village. While interacting with Sri Bhaskaran, manager of the village informed that in weekdays nearly 1,000 visitors are visiting the village and in weekends the footfall is raised to 2,000. The village is open throughout the year from 10 a.m. to 6 p.m. without any holidays. He further informed that a digital museum would be opened soon. A Franco-Tamil village as a part of the Art and Culture Village, which exhibits the architectural style of Tamil and French, would be opened soon and will provide accommodation for the visitors to stay a night inside the village. The Art and Craft Village is gaining popular gradually. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, has paid a visit to this village last August. The sales of various craft items are picking up and agencies and governments have placed bulk orders. The local people has now realized the importance of the village and started to visit in groups with all family members. This Art and Crafts Village is now an icon of Puducherry. This is T. Sivakumar, Deputy Director News, Akashwani, Puducherry.
The Ministry of Ayush, in collaboration with the All India Institute of Ayurveda, or AIIA, is hosting a sensitization program at the AIIA campus in New Delhi. The event aims to facilitate information sharing between the insurance sector and Ayush healthcare providers and includes the presence of CEOs and CMDs of general insurance companies as well as Ayush hospital owners. The program aims to encourage collaborations that enhance the accessibility and affordability of Ayush treatments for the public and promote holistic health and wellness across the country. Speaking on the occasion, Ayush Secretary Vaidya Rajesh Kotecha called it a landmark day for Ayush and insurance coverages. Professor Tanuja Nesari, Director of AIIA, showcased the Institute's remarkable journey and numerous achievements. She provided an overview of the significant milestones AIIA has reached in advancing Ayurvedic education, research and healthcare.
और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से परिचय की श्रृंखला में आज हम पंजाब में पटियाला लोकसभा सीट की चर्चा करेंगे।
शाही शहर पटियाला पर आधारित इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से तीन कद्दावर नेताओं के चुनावी रण में उतरने से यहां रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। मौजूदा सांसद परनीत कौर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं और इस बार वे अपनी पांचवी जीत के लिए चुनाव मैदान में हैं। लंबे समय से यहां सांसद रहने का लाभ उन्हें अवश्य मिल रहा है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने अपने ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह पर भरोसा जताया है, लेकिन उन्हें सरकार की कई नीतियों को लेकर लोगों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। उधर सन 2014 में बतौर आम आदमी पार्टी के सांसद बने डॉक्टर धर्मवीर गांधी भी दल बदल करके इस बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे हैं। श्रोमणी अकाली दल के वरिष्ठ नेता एमके शर्मा ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने जगजीत सिंह छरवर को मैदान में उतारा है। इस क्षेत्र में सभी प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार शिक्षित हैं और लोगों को अपने अपने अंदाज में लुभाने में लगे हैं। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
And preparations are on for last phase of elections to be held on 1st of June, while voting is completed in 15 Lok Sabha seats and 105 assembly segments in Odisha successfully. 74.45% polling was recorded in the third phase election on 25th of May. More from our correspondent.
With voting completed in 15 Lok Sabha seats and 105 assembly segments in Odisha, both the ruling BJD and the opposition BJP have claimed that they will secure an absolute majority to form the government. A day after, Chief Minister and BJD President Nabin Patnaik asserted that his party would provide a very stable government, former BJP state president and senior leader K.V. Singhal, during a press conference on Sunday, claimed that the Saffron party would form the government with a two-thirds majority. Odisha is conducting simultaneous polls for its 21 Lok Sabha Sabha seats and 147 assembly segments across four phases. Voting for the first three phases is complete, while the final phase scheduled for 1st June. While the third phase of the election was held in the state on 25th, its final voter turnout has been revealed. A total of 74.45% polling was held in the 6 Lok Sabha seats and 42 assembly seats under it in the third phase. In the last general election of 2019, there was 71.36% voter turnout in the above seats. Therefore, the voter turnout is about 3.09% more this time compared to the last election. Transgender icon Sradhana Mishra inspires us all to cast our vote without fear. She says,
Namaskar, myself Sradhana Mishra, I am the state icon, Chief Electoral Officer, Odisha. I am honored to be part of this election festival in India. I really inspire to everyone. Please join and make your vote very important. Being a transgender, I am proud to be involved in such a beautiful process to inspire each and everyone. Vote is our right and responsibility. Let's join with such a beautiful initiative of India. Yes, who I am, where we are, not a matter. Let's join, make the nation beautiful.
In the fourth and final phase of election in Odisha on 1st June, voting will be done in 6 parliamentary constituencies. Out of that, Kendrapada and Baleshwar is considered as important in the present scenario. Lack of industries, unemployment and migration of skilled workforce are the main issues in Kendrapada Lok Sabha constituency in coastal Odisha, from where BJP National Vice President Vaijanta Panda is contesting against BJD's Anshuman Mohanty. This time, the fight is mainly between Panda and Mohanty, with Siddharth Swarup Das of Congress also in the fray. On the other hand, the three major political parties, BJD, BJP and Congress, are fielding their candidates for the Lok Sabha polls in Baleshwar. BJP has fielded former Union Minister and current MP Pratap Chandra Shadangi, while former Union Minister Srikant Jena is contesting on the Congress ticket. BJD has nominated Lekhasri Samanta Singhara, who has quit BJP before the polls. This high-profile constituency has high-voltage campaign by star campaigners of all major political parties. With Tapan Kumar Maharana, this is Satyabrat Bahura for Parikrama from Qatar.
And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall the events that happened on this day.
In today's episode, we remember the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, who died on the 27th of May, 1964.
Jawaharlal Nehru was born in Allahabad on November the 14th, 1889. As a student, Nehru had been interested in the struggle of all nations who suffered under foreign domination. He took keen interest in the Sinn Féin movement in Ireland. He returned to India in 1912 from England and was drawn into the struggle for independence.
In 1912, he attended the Bankipur Congress as a delegate and became secretary of the Home Rule League, Allahabad, in 1919. In 1916, he had his first meeting with Mahatma Gandhi and felt immensely inspired by him. He organized the first Kisan March in Pratapgarh district of Uttar Pradesh in 1920. He was twice imprisoned in connection with the non-cooperation movement of 1920 to 1922.
In 1926, at the Madras Congress, Nehru had been instrumental in committing the Congress to the goal of independence. While leading a procession against the Simon Commission, he was lathi charged in Lucknow in 1928. On August the 29th, 1928, he attended the All Party Congress and was one of the signatories to the Nehru Report on Indian constitutional reform, named after his father Motilal Nehru.
The same year, he also founded the Independence for India League, which advocated complete severance of the British connection with India and became its general secretary. In 1929, Nehru was elected president of the Lahore session of the Indian National Congress, where complete independence for the country was adopted as the goal. He was imprisoned several times in connection with the Salt Satyagraha and other movements.
On October the 31st, 1940, Nehru was arrested for offering individual satyagraha to protest against India's forced participation in war. On August the 7th, 1942, he moved the historic Quit India resolution at the Congress session in Bombay and was arrested on August the 8th, 1942, along with other national leaders. After his release in January 1945, he organized legal defense for INA officers and soldiers charged with treason.
Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of India upon independence in 1947 and continued to serve the nation till his death in 1964. We salute the great Indian.
We also remember nationalist Hukam Singh, who died on the 27th of May 1983. Hukam Singh took part in the anti-Simon Commission demonstrations in 1928 and was injured and arrested during a police baton charge on a procession in the streets of Montgomery.
Simon! Go back! Simon! Go back!
Hukam Singh was born at Montgomery in Sahiwal district, presently in Pakistan. Singh was initiated into politics through the Shiromani Akali Dal and was its president for 3 years. He was also a member of the Montgomery Singh Sabha and its president for 3 years. Hukam Singh was arrested in 1924 and sentenced to about 2 years of imprisonment.
Partition forced Hukam Singh to cross over to India in August 1947. He became a refugee overnight. Disregarding his own safety, Singh actively took part in evacuating people from their houses and moving them to a safe place. However, his talents were soon recognized and he was appointed puni judge of the State High Court, Kapurthala, in December 1947. Hukam Singh was elected to the Constituent Assembly of India on 30th of April 1948. He actively participated in the Constituent Assembly's debates and only a year after his entry was nominated to the panel of its chairman.
Hukam Singh was also a member of the Provisional Parliament during 1950 to 1952. He served as a Speaker of the House in the Third Lok Sabha. The conventions and rules devised by him continue to guide the working of the Parliament even today. The noble soul breathed his last on the 27th of May 1983.
It's time for business news today. So, Judge, the Sensex may keh sakte hain sare record tod diye. The stock indices BSE Sensex and NSE Nifty 50 jumped to hit new all-time highs today, propelled by domestic reasons such as hope for favorable election results and international factors such as low crude oil prices and global market optimism. Nifty peaked at an intraday high of 23,110, while Sensex surged to 76,009. The gains were led by strong performances in banking and IT stocks. And in intraday trade, Brent crude was trading at $82.30 per barrel.
और खेल के मैदान की बात करते हैं. बेल्जियम के एंटवर्प में FIH हॉकी प्रो लीग मुकाबले में भारत ने अपने चौथे मैच में अर्जेंटीना को 4-5 से हरा दिया है. भारत का अगला मुकाबला 1 जून को जर्मनी से होगा. और अब याद करते हैं उन व्यक्तित्वों को जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन. तेलुगु के प्रसिद्ध विद्वान कंदुकूरी वीरेशलिंगम की आज पुण्यतिथि है. उन्हें आधुनिक तेलुगु साहित्य में गद्य ब्रह्म के नाम से प्रसिद्धि मिली. आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य के प्रवर्तक वीरेशलिंगम ने प्रथम उपन्यासकार, प्रथम नाटककार और आधुनिक पत्रकारिता के प्रवर्तक के रूप में ख्याति अर्जित की.
Today we are also remembering Bipin Chandra on his birth anniversary. He was an Indian historian specializing in economic and political history of modern India. An emeritus professor of modern history at the Jawaharlal Nehru University, he specialized on Indian independence movement and is considered a leading scholar on Mahatma Gandhi.
मराठी लेखक लक्ष्मण शास्त्री जोशी की आज पुण्यतिथि है. वे वैदिक विद्वान, संस्कृतवादी और जाने माने विचारक थे. उन्हें तर्क तीर्थ यानी कि तर्क का मास्टर की उपाधि दी गई. पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी फेलोशिप, पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार मराठी से उन्हें अलंकृत किया गया था. और आज ही जयंती है प्रसिद्ध मलयाली कवि और गीतकार ओट पलाक्कल नीलकंठन वेल्लू की साहित्य में बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2007 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म वैशाली के गीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में अलंकृत किया गया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो जागृति शर्मा और सायरा मुस्तबा को दीजिए इजाजत परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।